सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे इस पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूं संजय बैनर्जी का नमस्कार। सुनो दिल से। ये वनडे क्रिकेट का रोमांच ही तो है कि जब 350 के लक्ष्य का पीछा कर रही टीम महज 131 पर 6 विकेट गंवाने के बावजूद विपक्षी टीम को जीतने के लिए आखिर तक संघर्ष पर मजबूर कर देती है। हैदराबाद के पहले वनडे में जिस तरह भारत के विशाल टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 337 का सफर तय कर लिया, वो सचमुच चौंकाने वाला था। भारत को 12 रन से जीत मिली, लेकिन सीरीज मेहमान की हार के बावजूद जीवंत हो उठी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के बल्लेबाजों ने उम्मीदें रोशन की, तो गेंदबाजों ने भी खुद को बौना साबित नहीं होने दिया। शुभमन गिल एक ठोस बल्लेबाज के तौर पर और मोहम्मद सिराज एक खौफनाक गेंदबाज के तौर पर उभरे। विराट कोहली का भी फॉर्म बेहतर है और भारत को इसकी जरूरत थी। पिछले लगभग एक महीने में भारत की ओर से वनडे क्रिकेट में 2 दोहरे शतक देखने को मिले। दिलचस्प ये कि वनडे में भारत के लिए अब 7 दोहरे शतक हो चुके हैं। ईशान किशन और शुभमन गिल जैसे युवाओं ने बल्लेबाजी को मजबूती दी है। वर्तमान फॉर्म अगले वर्ल्ड कप में भारत के लिए उम्मीदों के नए आकाश की तरह है। हैदराबाद में पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खौफनाक हो सकता है। 349 के स्कोर में शुभमन गिल ने अकेले 208 रन की पारी खेली और बताया कि उनमें बड़ी पारी खेलने का मादा है। शुभमन दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं और साथ ही 1000 रन सबसे तेजी से पूरा करने वाले भारतीय बल्लेबाज भी। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत को जीत तो मिल रही है, लेकिन खुद रोहित का बल्ला ज्यादा चल नहीं रहा। विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 2 शतक जड़कर फिर राहत की सांस ली होगी। उनके वनडे शतकों की संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है और अगर यही फॉर्म कायम रहा तो सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। हल्की परेशानी इस बात की है कि श्रीलंका और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को रनों के लिए जूझना पड़ा है। शुभमन गिल के ओपनर के तौर पर कामयाब होने के बाद ईशान के पारी की शुरुआत की संभावना फिलहाल तय नहीं दिखती। इसी तरह सूर्य कुमार यादव अपना क्रम बदलने से शायद संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने भी छाप छोड़ी है, लेकिन विश्व कप अभी दूर है, तब तक किसका कैसा फॉर्म रहेगा कह पाना मुश्किल है। अक्सर जो खिलाड़ी किसी सीरीज में अपने फॉर्म से हमें आश्वस्त करता है, अगली सीरीज में या तो प्रयोगों के नाम पर उसे जगह नहीं मिलती या फिर उसका फॉर्म रूठ जाता है। वैसे भी टीम इंडिया बड़े टारगेट तो सेट कर रहा है, लेकिन ज्यादातर मैचों में विपक्षी टीमें उसके नजदीक पहुंच रही हैं, यानी स्कोर डिफेंड रन खर्च करने का मसला कायम है। टीम इंडिया को इस पर काम की जरूरत है। अगर रन बनाने के साथ रन रोकना भी बेहतर हो सके तो प्रदर्शन में निखार आ सकता है। खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों को यह समझने की जरूरत है कि माइक ब्रेसवेल और मिशेल सेंटर जैसे बल्लेबाज विपरीत परिस्थितियों में भी शतक और अर्धशतक जड़कर लक्ष्य को छोटा बना सकते हैं। अक्सर हम बड़े स्कोर बनाकर थोड़े बेपरवाह नजर आने लगते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे कल रायपुर में और तीसरा 24 को इंदौर में होगा। इसके बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। भारतीय T20 टीम में इन दिनों रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रहे पृथ्वी शॉ को शामिल किया गया है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के लिए मिचेल सेंटनर को कप्तान बनाया है। इस टीम में अनकैप्ड लेफ्ट आर्म बॉलर वेन लिस्टर को भी शामिल किया गया है। इस बीच BCCI ने अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। सीरीज में रोहित शर्मा टीम के कप्तान और लोकेश राहुल उपकप्तान होंगे। टीम में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को पहली बार शामिल किया गया है। टीम में बुमराह नहीं है, लेकिन फिटनेस की शर्तों के साथ रविंद्र जडेजा को रखा गया है। ऋषभ पंत के दुर्घटना में घायल होने के बाद विकेटकीपर का स्लॉट खाली है। ऐसे में देखना है कि मौका ईशान किशन को मिलता है या KS भरत को। इस टीम को लेकर जिस खिलाड़ी को शामिल नहीं करने पर सेलेक्टर्स आलोचना झेल रहे हैं, वो हैं मुंबई के सरफराज खान। उनका बल्ला डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रन उगल रहा है, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट तक ही सीमित रखे जा रहे हैं। इस बीच महिलाओं की त्रिकोणीय श्रृंखला में भारत ने कल जीत के साथ शुरुआत की। साउथ अफ्रीका के साथ कल देर रात हुए पहले मुकाबले में भारत ने 27 रन से जीत दर्ज की। भारत के लिए पदार्पण करने वाली अमनजोत कौर ने सबसे ज्यादा नाबाद 41 रन बनाए, जबकि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। भारत का अगला मैच सोमवार को वेस्टइंडीज से होगा। सीनियर महिला टीम ने कल त्रिकोणीय T20 टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टिक कर खेला और अब उसको जो अगला मुकाबला खेलना है वो वेस्टइंडीज के साथ होगा, क्योंकि वही इस त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम है। दूसरी ओर भारत की एक अन्य महिला टीम अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रही है। जूनियर भारतीय टीम ने अपने ग्रुप के तीनों मुकाबले जीतकर सुपर सिक्स में जगह बना ली। भारत के लिए कप्तान शेफाली वर्मा, उपकप्तान श्वेता सहरावत और ऋचा घोष लगातार रन बना रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जहां शेफाली ने 45 और श्वेता ने नाबाद 92 रन बनाकर टीम को आसान जीत दिलाई, वहीं यूएई के खिलाफ दूसरे मैच में श्वेता ने 74 और शेफाली ने 78 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने भी 29 गेंदों पर 49 रन बनाए। तीसरे मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ मन्नत कश्यप, अर्चना देवी और सोनम यादव की स्पिन तिकड़ी ने कमाल दिखाया। भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सुपर सिक्स में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस दौर में कल ऑस्ट्रेलिया से और परसों श्रीलंका से भारत का मुकाबला है। और अब डोमेस्टिक क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी के एक रोमांचक मुकाबले में विदर्भ ने गुजरात को 18 रन से हरा दिया। नागपुर में हुए इस मैच में गुजरात को जीत के लिए केवल 73 रन बनाने थे, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर आदित्य सरबटे ने 6 विकेट लेकर गुजरात को 54 रन पर समेट दिया। ये रणजी ट्रॉफी इतिहास में न्यूनतम टारगेट का बचाव करते हुए जीतने का एक रिकॉर्ड है। इससे पहले बिहार ने 1949 में दिल्ली के खिलाफ 78 रन का बचाव करते हुए जीत दर्ज की थी। छठे राउंड के मुकाबलों के दौरान तमिलनाडु के विजय शंकर ने लगातार तीसरा शतक जमाया, जबकि पंजाब ने मध्य प्रदेश को लगातार 5 जीत के बाद पहली हार का स्वाद चखाया। मध्य प्रदेश की दूसरी पारी केवल 77 के स्कोर पर सिमट गई। मध्य प्रदेश ने इससे पहले के राउंड तक लगातार 8 मैच जीतकर मुंबई के 60 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी। कर्नाटक के मयंक अग्रवाल ने भी केरल के खिलाफ कल दोहरा शतक जमाया। इस बीच प्लेट डिवीजन के दोनों सेमीफाइनल मैचों का फैसला आज चौथे दिन निकल सकता है। इसमें बिहार का सामना मेघालय से और सिक्किम का मणिपुर से हो रहा है। महिलाओं के सीनियर वनडे ट्रॉफी के पहले राउंड के मुकाबले पूरे हो चुके हैं। अब तक 6 शतक लगे हैं, जिसमें तमिलनाडु की अर्शी चौधरी ने लगातार 2 सेंचुरीज लगाई हैं। अंडर 25 सी के नायडू ट्रॉफी के तीसरे राउंड के मुकाबले भी पूरे हो चुके हैं। गुजरात ने अब तक लगातार 3 मुकाबले जीते। सीजन का पहला 13 शतक हिमाचल प्रदेश के मुकुल नेगी ने ओडिशा के खिलाफ बनाया। चौथा राउंड 22 जनवरी से खेला जाएगा। अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी का खिताब पंजाब ने जीत लिया है। कोयम्बटूर में खेले गए फाइनल में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 10 विकेट से हरा दिया। तो ये था सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित पॉडकास्ट सुनो दिल से। संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।